मरहूम के इसाले सवाब के लिए सलवात भेजें। असद भाई इजाजत दो।
मगफिरत करे, वो इस मोहल्ले की बरकत थे। सन 1976 में अगर तुम्हारे अब्बा का इसरार ना होता तो मैं अपने वालिद की बड़ाई की दुकान बेच चुका होता। फजले अली मरहूम ने कहा कि अगर लकड़ी के तख्तों को तुम्हारे लिए जोड़ना मुश्किल है तो जो काम भी तुम कर सकते हो उस दुकान में शुरू करो। ये उनकी नसीहत थी कि मैंने यहाँ चाय की दुकान खोली।
आपकी इनायत है मोहम्मद साहब, खुदा आपके वालिद की भी मगफरत करे।
तुम्हारे वालिद के एहतराम में मैं 3 दिन दुकान बंद रखूंगा। काला कपड़ा भी लगा रखा है और जब तुम बोलोगे तब मैं दुकान खोलूंगा। अपने लोगों को भी लाया हूं ताकि यहाँ चाय तकसीम करें। और भी कोई अगर काम हो तो जरूर बताना।
मैं आपकी जहमत का बाइस हुआ, माफ कीजिएगा। आइए आइए, तशरीफ लाइए।
आने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।
ताज़ियत पेश करता हूँ।
तकलीफ ही हसन साहब,
ये तो मेरा फर्ज था। जब फुर्सत मिल जाए तो दुकान पर आ जाना। अगर अपना कर्ज नहीं उतार सकते तो किस्तों में कर देते हैं, फिर तुम्हारा घर वापस कर दूंगा।
मेहरबानी आपकी, वरना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा।
मुझे पहले से ही मालूम था कि इस मामले में कोई खैर नहीं है। अगर तुम्हारे वालिद का अजीब इसरार ना होता तो मैं हरगिज ये घर ना खरीदता। खुदा हाफिज।
खुदा आपका भला करे।
खुदा
तकलीफ की।
ये तुम्हारा आखिरी गम हो,
सलामत रहिए।
जब मुसीबत सर पर आती है तो कुदूरतें मिट जाती हैं। मैं इतना भी गुनाहगार नहीं हूं कि माले दुनिया की खातिर किसी यतीम बच्चे की आह को अपने सर पर मोल लूं। जाता हूं, अपनी शिकायत वापस ले लेता हूं। अगर मेरा वही 15,200 वापस कर दो और मेरे इलाज में मेरी मदद करो तो मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हें अपनी दियत भी माफ कर दूंगा।
मुझे तो लगता है कि अब चलना चाहिए।
हाँ चलते हैं। सलाम अलैकुम, ताज़ियत पेश करता हूँ भाई।
नालायक, इसका सिरा इस तरफ करो। इस तरफ महमूद।
सलाम।
अलैकुम सलाम। लोगों के सामने दिखावा क्यों कर रहे हो? असद भाई, खुदा मगफिरत करे।
खुदा आपकी मरहूमीन की भी मगफिरत करे।
इस बाइक को मसूद के गैरेज ले जा रहा हूँ, एक हफ्ते में बिल्कुल नई बाइक बनाकर देगा। देखो जितना भी खर्च होगा मैं तुम्हें रसीद लाकर दूंगा ताकि पेमेंट कर सको, ठीक है? नई बाइक की कीमत चुकाने से तो यही अच्छा है, ठीक है ना? सही है ना?
हादी बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पर।
जेल ठीक है लेकिन सियापोश के लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा गुड़ सिखा दूंगा कि फिलहाल तुम्हें जेल जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जानते हो शहादतनामा क्या होता है?
नहीं।
आओ तुम्हें बताऊं। एक कागज लोगे, पड़ोसियों के घरों में जाओगे, हर घर से एक दस्तखत लोगे, कागज में लिखोगे कि मैं नाचीज असद अब तक एक बहुत ही अच्छा इंसान था और मैं अपने काम में सरगर्म रहता था और अब मुझसे गलती हो चुकी है और मैंने सैफी के साथ मारपीट की है और ये भी के आयदिन के भाई महमूद की बाइक चुराई है। मैं असद अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा और ये भी बता दूं कि अभी मेरे वालिद गुजर चुके हैं और कोई भी मेरी माँ और बहन की देखभाल के लिए नहीं है। फिर दो बुजुर्गों के साथ काजी के पास जाओगे और अपनी अर्जी पेश करोगे। ये काला कपड़ा भी उतारना मत, अपने सर को नीचा रखोगे और पूरी शराफत दिखाओगे और यकीन है कि काजी भी शहादत नामे की बिना पर और बुजुर्गों और तुम्हारे गम का ख्याल रखते हुए जेल की सजा को नकद जुर्माने में बदल देगा। और कुछ पूछना हो तो मसूद के गैरेज में मेरे पास आ जाना। घसीट कर लाओ इसे।
खुदा मगफिरत करे असद भाई।
जल्दी कर नालायक कहीं का।
क्या हाल है?
ठीक है।
सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
इसे कहाँ बांधे?
कल खैरात देनी है, आज क्यों ले आए?
कल जुमरात है, फातह के दिन कीमत बढ़ जाती है, लेने वाले ज्यादा हैं, दाम बढ़ जाएगा।
कितने की खरीदी?
1700 में।
यार कमजोर सा एक ले आते।
जब हो दे देना।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम्हारा पहचान वाला है?
शायद हो, लेकिन मुझे पता नहीं।
कंध को बर्तन में डालो। मेहंदी जल्दी करो, रुकना मत, यूं ही खड़े ना रहो। ये रजा कहाँ रह गया? रजा जल्दी आओ।
आया मोहम्मद साहब।
कहाँ हो तुम?
जी
चाय लेकर जल्दी जाओ, जल्दी करो, जल्दी जाओ। ये लो, ये 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 ले जाओ, ये कंदान ले जाओ।
जी
असद।
हाँ
एक मिनट आओ जरा।
तुम्हारा आखिरी गम हो, खुदा उनको बख्श दे।
शुक्रिया। बोलो।
अम्मी जान कह रही हैं ये भीड़ नहीं चाहिए।
क्यों?
अम्मी कह रही हैं कि अमाद के पैसे पाक नहीं हैं।
सदका तो दिया नहीं, वापस कर दूंगा।
फातिहा खाने में लोग भीड़ नहीं ज़बह करते हैं, कहते हैं कब्रिस्तान में खजूर देना ही काफी है।
कब्रिस्तान में क्यों? मेरे बाबा मजलूम मरे हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरा मोहल्ला उनके लिए फातिहा पढ़े।
असद अम्मी का दिल बहुत सदमे में है, तुम और खराब मत करो।
सलाम अलैकुम। तार्ज़िया तार्ज़िया।
शुक्रिया।
ये लो। जी जनाब।
इसे चारा खिलाओ, जरा मोटी हो जाए।
ये बहुत अच्छा।
अहमद।
हाँ बोलो असद।
एक मिनट यहाँ होना।
फरी।
जी जनाब।
मोटी हो जाए।
जी ठीक है।
जी असद भाई।
अम्मी कह रही हैं कि मुझे ये भेड़ नहीं चाहिए।
क्या है? इसकी जाहिरी हालत पर मत जाओ, मेरी गाड़ी की तरह सेहतमंद है।
ایک اور بڑا خرچہ آ جائے گا.
یہ کیا کہہ رہے ہو, ہماری طرف سے لے لو.
تمہارا شکریہ, لیکن ایک بات اور بھی ہے.
کہو.
امی کو ڈر ہے کہ اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا.
ابھی تو ذبح بھی نہیں کیا, ماہر قصائی سے ذبح کراتے ہیں.
یار میری امی کا مطلب اس کا پیسہ ہے, سمجھا کرو.
کروش, بھیڑ کو اٹھاؤ, چلتے ہیں. اٹھاؤ نا, یہ لوگ خیرات نہیں لیتے. دیکھو اسد, 1700 کی بھیڑ ہے اور 85,000 کی پک اپ وین. تمہارے بابا کے چہلم تک انتظار نہیں کر سکتا. چائے کی دکان کھلتے ہی اپنا حساب چکتا کر دینا.
میرے ابا کی مجلس نہ ہوتی تو صحیح سلامت نہیں جانے دیتا.
بکواس بند, چلے.
شکریہ آپ کا, خدا زحمت کی, خدا حافظ.
تم رہنے تو میں دھو لوں گی.
ضرورت نہیں, خود ہی دھو لیتا ہوں.
ایک مہمان ابھی تک نہیں گیا ہے, یوں ہی بیٹھا برابر روئے جا رہا ہے.
انہیں اپنا دل ہلکا کر لینے دو.
پتا نہیں کہ کون ہے, امی جان بھی نہیں پہچانتی. امی جان کہہ رہی ہیں کہ تم جا کر اس کے پاس بیٹھو, بری بات ہے اکیلا بیٹھا ہے.
امی جان کب تک اس سے پیغام کہلواتی رہیں گی؟ 3 دن سے انہوں نے مجھ سے کچھ بات نہیں کی. میں خود بھی بہت غم زدہ ہوں. خدا کے لیے ان سے کہو کہ میرے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑکے, خدا کے لیے.
وہ بیچاری کیا کریں, ان 3 دنوں میں وہ اتنی ڈھل گئی ہیں جیسے کہ 80 سال کی ہوں.
موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کیا نہیں ہے؟ مانا میں نے غلطی کی, حماقت کی. ایسا نہیں ہے کہ ان کی موت کا اکیلا ذمہ دار میں ہی ہوں. امی سے کہو, اب جبکہ سب مجھے ہی ملامت کر رہے ہیں تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا ہے بتاؤ. کہو اس دن سے ڈرے جب اسد کو اٹیک آئے اور میری طرح وہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھے. خدا کی قسم مرثیہ میں ٹوٹ گیا ہوں, مزید حوصلہ نہیں رہا مجھ میں.
اچھا میں چلتا ہوں.
بہت بہت شکریہ. یہ انصاف نہیں ہے مرثیہ, انصاف نہیں ہے.
اگر میں نے زندگی میں ایک بار بھی بابا سے بدتمیزی کی ہو, ایک بار ان کے سامنے اونچی آواز میں بولا ہو, اگر ایک بار ان کی مرضی کے خلاف کام کیا ہو, تب تو ٹھیک ہے مرضیہ. تمہیں نہیں معلوم لوگ اپنے والدین کے ساتھ کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں. باپ جواب میں یہ تک نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہہ رہے ہو. میں جو صبح شام ان کے گرد پروانے کی طرح گھومتا تھا, ان کی موت کا الزام مجھ پر بھرا جا رہا ہے. اس میں میری کیا غلطی ہے کہ جس کام میں بھی میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ الٹ ہو جاتا ہے. ایک کب بھی ہاتھ میں نہیں ٹھہرتا, بد قسمت ہوں نا میں, میں کیا کروں.
اسد میرے بھائی, تم اٹھو اندر جاؤ, میں یہ سب سنبھال لوں گی. اٹھو بھائی.
اسد خالی ہاتھ مت جاؤ, ان کے لیے چائے لے جاؤ.
آپ مجھ سے بات کریں, جو کہیں گی میں کروں گا.
اگر اس گھر کے سرپرست تم بننا چاہتے ہو تو ایسے بنو کہ تم پر بھروسہ کیا جا سکے.
وہ کیسے؟
اپنے ناسوں کو پوچھ لو.
ٹھیک ہے, अब से रोने धोने की छुट्टी, ठीक है?
जी साहब, माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको।
मैं मनु चहिर हूं।
तशरीफ लाने का शुक्रिया। मनु चहिर साहब, आप कौन से वाले मनु चहिर हैं?
कोई सा भी नहीं,
बेअदबी ना समझेगा, मैंने अभी तक नहीं पहचाना।
तुम मुझे जानकर क्या करोगे, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब खुदा तुम पर रहमत करे फजले अली।
मेरे बाबा को कैसे जानते हैं आप?
तुम उनके बेटे हो?
जी।
नाम क्या है तुम्हारा?
आपका खादिम असद।
असद, उसे यह नाम बहुत पसंद था।
मनु शहर साहब, अभी तक आप बैठे हैं?
देख तो रहे हो
जनाब, हमें अब चलना चाहिए।
तुम गाड़ी में जाकर बैठो, जब आना होगा आ जाऊंगा।
आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मैडम को पता चला तो बहुत नाराज होंगी। मैं तो कह दूंगा कि मैं शुरू से आखिर तक गाड़ी में बैठा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं।
क्या अर्ज करूं?
जब तक वो जिंदा थे उनकी कदर जानी।
जी सही फरमा रहे हैं।
फजले अली एक कीमती खजाना थे।
जी सही कहा आपने।
बताया नहीं कौन से मनु चेहर हैं?
कुछ नहीं बताया उन्होंने।
शायद अब्बा जान के दूर के रिश्तेदारों में से थे।
फजले अली का तेहरान में कोई रिश्तेदार नहीं है।
मतलब दूर का भी नहीं?
बताया ना कि नहीं था।
तो फिर कौन था जो इतना रो रहा था?
शायद वो दिखावा कर रहा था।
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे उसका भाई फौत हुआ हो। अम्मी, दिखावा वो आदमी करता है जिसको कोई फायदा हो।
हो सकता है हो।
भला हमसे किसी को क्या मिल जाएगा? कुछ है ही नहीं जो मिलेगा। उसके एक जुमले ने मेरे अंदर आग लगा दी। अम्मी, बोला तुम्हारा बाप खजाना था, कदर नहीं की तुमने। हाँ,
अम्मी जान, आप कुछ जान रही हैं जो बताना नहीं चाह रही हैं?
मुझे जब तक यकीन नहीं होता मैं कोई बात नहीं करती।
तुमने सुना उन्होंने क्या कहा?
कह रही थी कि उनकी बातों पर इत्मीनान नहीं है।
नहीं, कह रही थी कुछ ऐसी बातें हैं जो वो बताना नहीं चाह रही है।
अब तो वो चला गया हमारे वालिद की तरह।
मनु مرحوم ان کی روح کو ثواب بخشنے کے لیے باواز بلند صلوات بھیجیں. مرحوم ان کی روح کو فشار قبر سے بچانے کے لیے باواز بلند صلوات بھیجیں. مرحوم فضل علی کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات بھیجیں.
آپ سب لوگ مرحوم فبے علی کی روح کو خوش کرنے کے لیے پہلے صلوات بھیجیں، پھر ہم یہ دکان کھولتے ہیں.
بابا سے بلند صلوات بھیجیں.
آئیے آئیے، اندر آئیے، اندر آئیے.
اسد بیٹے کب آ رہے ہو بات چیت کرنے کے لیے؟
آج کل میں ہی حسن صاحب.
جتنی جلدی کرو گے اتنا بہتر ہے.
ماں نے کہا ہے کہ پہلے قرض خواہوں سے حساب کتاب کر لو. آج ان سے حساب کتاب کر کے دیکھتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا بچتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کے احسان کو چکا پاؤں گا.
بس خیال رہے کہ مجھ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے.
ٹھیک ہے،
چلتا ہوں میں.
خدا حافظ.
سلام.
وعلیکم السلام.
سلام اسد، کیسے ہو چھوئی موئی؟ یہ رہی بائک ریپیرنگ کی رسیدیں، انہیں تمہی کو دینا تھا نا.
تم نے مجھے چھوئی موئی کیوں کہا؟
یہی پکارتے ہیں نا، اور کیا کہوں.
وہ بابا جان کی موت سے پہلے تھا.
پہلی بات یہ کہ اس کا تمہارے باپ کے مرنے سے کیا ربط ہے. دوسری یہ کہ انہیں مرے ہوئے اب 10 دن ہو چکے ہیں، ان کی مٹی بھی اب سوکھ گئی ہوگی. اب تو زندگی معمول پر آ جانی چاہیے میرے بھائی.
تم وہی صرف اسد ہی کہو.
جو بھی ہو، ہمیں جلدی سے رخصت کرو، گیرج والا پیسے کا انتظار کر رہا ہے.
اس کا تو تم نے سب کچھ بدل دیا ہے.
میرے بھائی تم نے اس میں کچھ ظالم چھوڑا تھا کیا؟ کیوں محمود؟
میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بائک میں کوئی بھی چیز سالم نہیں تھی.
کل ملا کے کتنا ہوا؟
میرے حساب کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے محمود کو لے آیا ہوں.
محمود کتنے ہوئے؟
12,500.
اتنے میں تو نہیں آ جاتی ہے.
نہیں، نئی 3,000 سے اوپر کی ہے.
لیکن یہ والی نئی سے اچھی کام کر رہی ہے. اس کی موٹر بھی بالکل نئی کر دی ہے، اس کے شاکرز بھی نئے لگا دیے ہیں، سائلنسر بھی لگا دیا ہے، بہت بڑھیا بائک بن گئی ہے.
یہ طے نہیں ہوا تھا.
تم پھر کہہ رہے ہو کہ میں چھوئی موئی نہیں ہوں. میرے بھائی تم نے ہم سے نئی بائک نہیں چرائی تھی کیا؟ اگر اس کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو نئی بائک دینی ہوگی نا.
لیکن تم نے تو کچھ اور کہا تھا.
میرا کہنا یہ تھا کہ ایک ایسا راستہ نکالیں گے کہ تمہیں نئی بائک کا پیسہ نہ دینا پڑے. ابھی بھی 3,000 تمہارے فائدے میں نہیں ہے کیا؟
بہتر ہے 3,000 تمہارے ملا کر نہیں خرید لوں اور کسی کا احسان نہ لوں.
تو پھر مسعود کا پیسہ کون دے گا؟
جو بھی دے.
جو بھی دے گا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے.
یہ اس وقت کی بات تھی جب میں اسد چھوئی موئی تھا.
مطلب تم نہیں دینا چاہتے؟
میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے راستے پر جائیں.
تو پھر کان کھول کر سن لو، یا تو ابھی پیسے دو گے یا ماچس فیکٹری کے پیچھے لے جا کر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری ماں بھی تمہاری لاش نہیں پہچان پائے گی، سمجھے؟ چائے کس نے مانگی تھی؟
اسد صاحب کی طرف سے تھی.
بولو مت، اٹھا کر لے جاؤ.
معاف کیجیے گا.
اگر میں میز سے یوں ہی اٹھ گیا تو سمجھ لینا تمہیں مسل کر رکھ دوں گا. پھر چاہے تم جتنا گڑ گڑا لینا، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. کیوں محمود؟
اسد میرا بھائی بہت بڑا غنڈہ موالی ہے.
بیٹھو.
بہت دیر ہو چکی ہے.
میں تھوڑا تھوڑا دینا چاہتا تھا لیکن اب یہ نہیں کروں گا. بیٹھو.
پورا نقد میں؟
پورا نقد. بیٹھو. दुश्मनी खत्म।
दिन में तो मुझे तुमसे कोई काम नहीं, पर रात में मोहल्ले में नजर मत आना। चलो महमूद।
ये 200 तुमान मैंने पार्किंग के लिए रखे थे, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। तुम रख लो इसे।
सैफी, सैफी साहब।
कौन है?
असद।
असद छुई मुई। सुनो, जरा जाओ गाड़ी पर बैठकर स्टार्ट तो करो। ज्यादा रेस मत दो, स्प्रिंग टूट जाएगी। तीन दिन से मैं परेशान हूं, सारे कलपुर्जे देख लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परेशान करके रखा है मुझे।
तुम्हारा हाल समझ रहा हूं, मेरा भी यही हाल है।
तुमको क्या हुआ?
आज दिन ने वादा खिलाफी की, पूरी एक नई बाइक की कीमत ली।
बहरहाल जिंदगी हम जैसों के लिए बहुत सख्त है। मेरी ही मिसाल ले लो, मैं खुद भी कमीनों के आगे झुकने से बचने के लिए मजबूर हूँ कि इस ट्रैक्टर को रोड पर लेकर आऊँ, कुछ काम करूँ, कुछ हासिल करूँ, लेकिन कुछ बच नहीं रहा है।
पांव का प्लास्टर इतनी जल्दी खुलवा दिया?
बहरहाल टूटी हुई चीज जुड़ ही जाती है।
हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अलबत्ता खुदा का शुक्र करो के ये टूटी नहीं थी।
मतलब तुम हॉस्पिटल का खर्चा नहीं देना चाहते?
क्यों नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ।
लेकिन मैं नहीं हूँ।
वही 15,200 दूं और हिसाब बेबाक।
25,200 दे दो, खाता साफ।
क्या तुम्हारा अस्पताल का खर्च 10,000 हुआ है? दिल की सर्जरी करवाई थी क्या?
अस्पताल का तो कोई खर्चा ही नहीं था, वो तो हिसाब ही नहीं किया।
तो फिर किस चीज के पैसे मांग रहे हो?
दियत का पैसा है ये।
हम इस बारे में बात कर चुके हैं सैफी।
मैंने तो कहा ना, वो बात गई। उस दिन तुम्हारे बाप का सेवुम था, मैंने जज्बात में आकर एक बात कह दी। जब घर गया तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत समझाया, फिर मेरी राय बदल गई।
नहीं सुना कि मर्द की बात एक होती है?
मर्द है, लेकिन बात बीवी की है।
अच्छा, ऐसा है? तो फिर दियत के पैसे का फैसला अदालत में होगा।
मतलब ये कि तुम जा रहे हो?
कहो तो एक बार फिर स्टार्ट मारूं और फिर चलूं।
असद, हम खेतों के बीच में हैं, समझे?
तुम्हारे ये ट्रैक्टर जल्दी स्टार्ट नहीं होगा।
अगर पिकअप भी होगी तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा।
पहुंचाओगे?
मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ असद।
क्या मेरी बात वाजे नहीं थी?
तुमने 2.5 लाख तो मुझसे बयाने के लिए हैं और मुझसे 60,000 और मांग रहे हो।
जी हाँ, बात बिल्कुल साफ है।
इसका मतलब तुम घर वापस नहीं लेना चाहते हो?
नहीं हसन साहब, ये बात नहीं है।
यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है।
देखिए हसन साहब, मेरा मतलब यह है कि फिलहाल आप बयाना बढ़ा दें, उसके बाद पैसे टुकड़े टुकड़े कर ले लें।
तो अभी वापस क्यों नहीं ले लेते कि मैं घर तुम्हारे नाम कर दूं? मतलब कि 60,000 की तुम्हें जरूरत है ना?
शाबाश, अब सही समझे।
उस 2.5 लाख बयाने में से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है।
अरे भाई, नामुराद सब अपनी जबान से फिर गए। सिर्फ 25,000 रह गए, इसको 85,000 करके अमाद को देने होंगे।
इस हिसाब से कि सौदा कैंसिल हो गया है, सादाताबाद के एरिया में जाके वहाँ 2,000 मीटर जमीन खरीद ली। अलबत्ता उस 2.5 लाख तुमान को नजर में रखते हुए जो तुम्हारे पास है।
हसन साहब, आप भी पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप मेरे मरहूम बाबा का लिहाज करते हुए
इस सौदे को कैंसिल नहीं कर सकते?
तुम्हारे वालिद मरहूम की खातिर मैंने अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त किया ताकि तुम अपना कर्जा किस्तों में चुका सको। तुम्हारी कसम असद, कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं उस मामले को तोड़ना चाहूँ तो तोड़ने की खातिर 2 लाख तोमान मुझे जुर्माने के देने होंगे।
ठीक है,
खुदा हाफिज।
मेरी ये बाइक 2-3 दिन तक आपके पास अमानत रहेगी, जब तक मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा।
गिरवी रखने की जरूरत नहीं है असद, ले जाओ इसे।
स्टार्ट नहीं हो रही है, वरना ले जाता। ये वही था। घर में नहीं है जनाब, बेल मत बजाइए।
सलाम असद बेटे।
माशाल्लाह मेरा नाम अच्छी तरह याद है आपको। आपका नाम क्या था?
मनु चेहर।
मैं आपका खादिम हूँ, कोई खिदमत?
फजल अली की याद आ रही थी, सोचा तुमसे मिलता चलूं।
खुद को शाबाशी देनी चाहिए, मेरा दिल भी यही कह रहा था, इसलिए घोड़े की तरह दौड़ता आया हूँ।
अच्छा, अगर घर पे कोई नहीं है तो मैं चलता हूँ।
आप साहिब इख्तियार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेहमान कोई भी हो, हबीब खुदा होता है, चाहे घर में कोई भी ना हो। आप मेहरबानी करके गाड़ी में बैठ जाइए, मोहम्मद आका की दुकान पर चलिए, तब तक घर वाले लौट आएंगे। रिवर्स गाड़ी में जाना होगा क्योंकि इस गली में हाई क्लास गाड़ी वालों को तंग करते हैं।
जैसा तुम चाहो।
जनाब ये गाड़ी आप ही की है?
तुम इसे अपनी ही समझो।
आपका घर शिमरान में है ना?
तुम्हें कैसे पता?
यही तो, हमें सब कुछ मालूम है।
और क्या जानते हो?
फिलहाल जाने दीजिए। आप कह रहे थे कि मरहूम अब्बा जान के दोस्तों में से हैं?
मैंने ऐसा कुछ कहा क्या?
नहीं, किसी और जरिए से पता चला है।
तुम्हारी माँ ने कुछ बताया क्या?
नहीं भाई, वो बेचारी तो आपको जानती भी नहीं है। इतना कि उस दिन जब आप मेरे वालिद के लिए रो रहे थे, वो समझी कि आप किसी खास मकसद के तहत रो रहे हैं।
मिसाल के तौर पर किस मकसद से रो रहा था?
हाजी साहब, मैं कहता हूँ वो आपको नहीं जानती। आप कह रहे हैं किस लिए? अब उन्होंने एक बात कह दी तो ज्यादा सीरियस ना लें।
ये है, अगर यहां ना जाए तो?
क्यों नहीं हो सकता, इत्तेफाक से मेरे लिए भी यही बेहतर है।
तो तुमने कहा कि मुझे अच्छी तरह जानते हो,
अब हमने कुछ कह दिया तो आप दिल पर ना लें।
तो मैं चलता हूं, किसी और वक्त आ जाऊंगा जब तुम्हारे घर पर कोई हो।
हाँ जी, अगर आपसे कोई काम ना होता तो आपको बैल बजाने देता और अंदर जाने देता।
हाँ, तो तुम्हें मुझसे काम था जो अंदर नहीं जाने दिया।
हाँ, लेकिन पहले ये देखना होगा कि मेरे बाबा के साथ आपकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि आप पर भरोसा किया जा सके।
फर्ज करो कि थी।
फर्ज को छोड़िए, यकीनी बात करें मनु चहर साहब,
हम बहुत जिगरी दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों की तरह।
तो फिर माँ क्यों नहीं जानती आपको?
हमारी दोस्ती इससे बहुत पहले की थी कि तुम्हारी माँ शादी करके घर आती।
ये हुई ना बात, मेहरबानी करके उस ड्राइवर को छुट्टी दे दें ताकि हम अपनी बातें कर सकें।
उसको इन बातों से मतलब नहीं है, मैं सुन रहा हूं।
क्या आप बाबा से अपनी दोस्ती का लिहाज रखते हुए 3 लाख तुमान मुझे दे सकते हैं? इसी बहाने से हर महीने आप आएं और अपनी किस्त ले जाएं।
ये तो बहुत ज्यादा है,
शिमरान जैसी जगह पर घर है, बाबा के दोस्त थे और दोस्ती का लिहाज भी होगा।
देने ना देने से पहले मुझे उसकी वजह जाननी होगी।
एक वजह तो हसन साहब है, हमारे घर के पेपर उनके नाम है। दूसरी वजह अहमद है, जिसकी पिकअप को मैंने खाई में गिरा दिया।
شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی بر